ओम शांति। हम आदरणीय प्रेम दीदी जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी जो अपने बाल्यकाल से ही जैसे ही ज्ञान से जुड़े, 1965 में आप ज्ञान में आए और 1965 में ही आप समर्पित हो गए। मम्मा बाबा के प्यार और पालना जो आपने पाई उसमें एक बहुत विशेष गुण बाबा का, रमणीकता का, तो आज भी बहुत गंभीर टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता, परंतु बाबा की वो विशेषता आप में इतनी समाई है कि वो हर चीज को बहुत रमणीकता के साथ सिखाने में बहुत माहिर हैं। आप वर्तमान समय देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं देने के पश्चात पंजाब जोन की विशेष सेवाएं संभाल रहे हैं, पंजाब जोन इंचार्ज हैं आप, और इसके साथ साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का सारा कार्यभार आप बहुत बखूबी निभा लेते हैं। व्यापार का कोई अनुभव नहीं होता बहनों को, परंतु फिर भी बड़े बड़े व्यापारियों को कितने ही समस्याओं से मुक्त करने में आप पारंगत हैं। आप अपने अनुभवों से उन्हें सिखाते हैं, ज्ञान और योग के द्वारा उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। पिछले चार कुंभ के मेले 65 में आप समर्पित हुए थे, परंतु 74, 98 और अभी जो कुंभ हुए थे, तो पिछले चार कुंभ लगातार आपने संभाले। उनमें आपने योग शिविर आदि कराकर भी हजारों आत्माओं का कल्याण किया। अनेकानेक महामंडलेश्वर संतों आदि को भी आपने ज्ञान दिया। तो वो महाकुंभ थे 1974, 1986, 1998 और 2010 में आप अपनी अथक सेवाएं देते रहे और अनेकों राजयोग शिविर आप कराते रहे। खासकर युवाओं के लिए आप विशेष प्रेरणा स्रोत हैं, जो आज भी अनेकानेक युवा आपके द्वारा अपने ज्ञान योग में विशेष पालना लेकर नशा मुक्त हुए हैं। और आपका जो जोनल कोऑर्डिनेटर रहे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के, तो उसमें आपका तनाव मुक्त रहना एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेस्ट पार्ट होता है और वो आप में बहुत है, हल्के रहना और हल्के रखना। तो आज संपूर्ण पवित्रता के विषय में आदरणीय दीदी जी द्वारा सुनेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, त्रिमूर्ति शिव, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, पद्मा पद्म भाग्यशाली, आप सब बाबा के बच्चों को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आज भी बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष के बाद हम सब फिर से इस पावन भूमि पर मिलते हैं। खुशी की बात है कि हर 5000 वर्ष के बाद मिलते ही रहेंगे। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। पवित्रता के सागर के समीप जाने के लिए हमें भी अवश्य पवित्र बनना होगा, क्योंकि हमारी आत्मा जब परम धाम में थी तो शांत स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, पवित्र स्वरूप थी, सातों गुणों से भरपूर थी। जब आत्मा इस संसार में आई जनन मरण के चक्कर में आई और 84 जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग में आकर पहुंचे तो बहुत ही परेशान, 5 विकारों में ग्रस्त, दुखी और अशांत हो गए। जब हमारी आत्मा विकारों में ग्रस्त हो गई, अपवित्र हो गई, अशांत हो गई, तो हमने दिल से पुकारा कि हे प्रभु आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। हे पतित पावन आओ, रहम दिल बाबा, दया का सागर, उसने हमारी पुकार सुनी। कहते भगवान को भी संकल्प चला कि मेरे बच्चे 5000 वर्ष का चक्कर लगाकर बहुत दुखी और अशांत हो गए हैं, मैं भी जाऊं। कितना ना प्यार प्यारे बाबा के लिए आए कि हम सब आत्माएं अपवित्र बन गई, काली बन गई, विकारों में ग्रस्त हो गई। बाबा ने ये संकल्प नहीं किया कि मैं जब इस कलयुगी दुनिया में जाऊंगा, सब आत्माएं अपवित्र हैं, तो मेरा पवित्रता का संदेश कौन सुनेगा। लेकिन बाबा जानी जानन हार है, बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा ने हर कलक हम बच्चों को पति से पावन बनाया है, अनुभवी है, और इसलिए बाबा इस धरा पर हम बच्चों की पुकार सुन करके आया। और किसके तन में आया, जिसने 84 जन्मों का अनुभव किया, बिल्कुल पतित आत्मा बन गई और उस साधारण तन में प्रवेश करके बाबा ने क्या संदेश दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। जब बाबा के तन में शिव बाबा आए और पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश दिया, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने बाबा की इस बात को समझा और बाबा की आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल पतित हो गई थी, और बाबा ने जब संदेश दिया पवित्र बनो, योगी बनो, और कितनी आत्माओं ने उस संदेश को सुना और पवित्र और योगी बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान का पहला शब्द पवित्र बनो, योगी बनो, किसको बनना है, आत्मा को बनना है, क्योंकि आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते काली पड़ गई है। और कितने परीक्षाएं आई, कितना कुछ हुआ, कितने विरोध हुए, लेकिन जैसे जैसे विरोधता बढ़ती गई, ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होता गया, धारणा की इमारत ऊंची उठती गई और बाबा का स्थापना का कार्य नई दुनिया के लिए शुरू होता गया, और कितनी आत्माओं ने ये संकल्प किया कि मुझे पवित्र और योगी बनना है। मुझे याद है कि हमारे रमेश भाई जब पहली बार फॉरेन में गए, तो वहां पर जब संदेश दे रहे थे तो उसमें जो पुस्तक थी, पर्चा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। तो उसमें एक फॉरेनर ने रमेश भाई को कहा, अरे रमेश जी, यहां पर बी होली बी योगी का संदेश आपका कौन सुनेगा? आप तो अगर ये यहां संदेश दे दें कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो भी आप अपने मिशन में कामयाब हैं, वरना बी होली बी योगी का आपका संदेश कोई नहीं सुनेगा। तो रमेश भाई ने कहा कि हम तो भगवान के मैसेंजर हैं, हम भगवान का मैसेज लेकर के आए हैं, बी होली बी योगी, हम तो यही संदेश देंगे, हम इस अमानत में ख्यानत नहीं डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बाबा का मैसेज बी होली बी योगी का जब फॉरेन में गया, तो आज हमारे 130 देशों में इतने फॉरेनर्स बाबा के ज्ञान को समझा और बाबा के कार्य में सहयोगी बने और अपना जीवन पवित्र और योगी बनाया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे याद है कि हमारा यूनिवर्सल पीस हॉल जब बना, अभी भी आप वहां जाती हैं तो वहां पर जो बाहर चित्र लगे हुए हैं, तो हमारे 2-3 फॉरेनर भाई खड़े थे, चित्रों पर समझा रहे थे। चित्रों पर तो वही देवी देवताओं के चित्र हैं, तो उसमें इंडियन लोग आकर के समझ रहे हैं, तो वो फॉरेनर भाई इंडियन भाई को समझा रहा है त्रिमूर्ति के चित्र पर कि भाई जी, ये हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, शिव बाबा भगवान आकर के परम धाम से 3 कर्तव्य करती हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य कराती हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य कराती हैं और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य कराती हैं। वो इंडियन जब फॉरेनर से ये ज्ञान सुन रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे देवी देवताओं की जो बातें हैं फॉरेन के लोग समझा रहे हैं। और उसने सब चित्रों को बहुत अच्छी तरह से समझा, 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद फिर उसने अपने शहर में जाकर के बाबा का सेवा केंद्र स्थापन किया और बाबा का पक्का बच्चा बना। जैसे बाबा कहते हैं कि फॉरेन से आवाज निकलेगा और भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, ये प्रैक्टिकल में बात आती है। तो कहने का भाव ये है कि शिव भगवान आकर के जब पवित्र बनो योगी बनो का हमें लक्ष्य दिया, तो हमें सबसे पहले 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात, हमें अपने लक्ष्य को सदा याद रखना है। जब आप पहले दिन बाबा के घर में आए थे, तो आपको लक्ष्य दिया गया था कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना, यही था ना। और कहते भी है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो हमको अपने इस लक्ष्य को सदा याद रख करके, और जो देवात्माओं के गुण हम गाते रहे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो सर्व गुण संपन्न हमको बाबा बनाने के लिए आया है, तो सदा अपने लक्ष्य को हम अपने दिल में समा कर रखें। और बाबा ने इस लक्ष्य को बच्चे सदा याद रखें, बाबा ने बैज बनवा करके दिया था श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का, जो कि इस समय सब बाबा के बच्चे लगाते हैं। परंतु उसमें हम अपने लक्ष्य को कितना याद रखते हैं, जब भी बैज लगाया हुआ है तो अपने लक्ष्य को सदा मजबूत करना है। दूसरी बात, पवित्रता के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। मैं कौन, कहां से आया, मुझे कहां जाना है। बाबा ने कहा सदा तीन बातें ध्यान में रखो, सदा तीन बातें याद रखो, बहुत सहज है। कौन सी तीन बातें हैं? सबसे पहली बात, हम इस संसार में आए अकेले, हम इस संसार में आए अकेले, ये बात सत्य है? हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, हमें जाना भी अकेले है, अकेले जाना है। तीसरी बात, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है। तो ये सदा हमें याद रखना है, आए अकेले, जाना अकेले, ना कुछ लेकर जाना है ना कुछ लेकर आए हैं। इसलिए हमें सदा याद रखना है मैं और मेरा बाबा। कहते अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मन बड़ा चंचल है, ये टिकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, दो बातें याद रख। कौन सी दो बातें? सबसे पहला वैराग्य वृत्ति, दूसरी बात अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते। तू कर्म योगी बन, कर्म करते हुए तू भगवान को याद कर। तो पहली बात, जब वैराग्य की बात आती है तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान स्वरूप से हम बंधन मुक्त बनेंगे। व्यक्ति, वैभव, वस्तु, इसमें हमारा कहीं मन तो नहीं जाता। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। कहते हैं एक व्यक्ति बहुत गरीब था, तो वो अपने नगर के राजा के पास गया। बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। राजा को कहता है राजन, मेरे को सहयोग दीजिए। राजन, एक समय था जब मेरा बहुत सुंदर महल था, 32 नौकर उसमें काम करते थे, 2 मेरे पार्टनर थे, वो मुझे बहुत अच्छा सहयोग देते थे, 2 मेरे भाई मेरे सदा सहयोगी रहे, और मेरी पत्नी मेरी आज्ञा का पूरा पालन करती थी। और हे राजन, मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूं, अपने भाई की मदद करो, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो राजा को बहुत रहम आया, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, उसको आदेश दिया कि जाओ राजकोष से 4 थैलियां अशरफियों की लेकर के आओ। तो मंत्री ने आज्ञा का पालन करते हुए राजकोष से 4 थैलियां अशरफियों की लेकर आई, राजा को दी और राजा ने उस व्यक्ति को दे दी। वो व्यक्ति चला गया। बाद में मंत्री कहता है राजा को कि राजन, आपने कुछ उसकी चेकिंग ही नहीं की, उसकी कुछ तो जांच पड़ताल कर लेते। उसने कहा मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूं और मैं बहुत गरीब हूं, तो आपने 4 थैलियों की अशरफियां दे दी। तो राजा कहता है ये व्यक्ति मुझे बहुत बड़ी शिक्षा देकर के गया है। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने कहा मेरा बहुत सुंदर महल था, ये बहुत हष्टपुष्ट था, इसकी बहुत अच्छी सेहत थी, समय के अनुसार इसका ये महल खंडर हो गया और जो इसने कहा 32 नौकर काम करते थे, 32 दांत, एक एक करके वो भी इसका साथ छोड़ गए। जो इसने कहा 2 मेरे पार्टनर थे, 2 टांगे इसका पूरा सहयोग करती थी, आज ये बेचारा चलने से लाचार है। 2 भाई, 2 हाथ थोड़ा बहुत इसको सहयोग देते हैं जिससे ये अपना बेचारा थोड़ा सा अपना काम करता है, और पत्नी, बुद्धि रूपी पत्नी, बुढ़ापे के कारण ये कहता कुछ है करती कुछ है, ये भी इसका कहना नहीं मानती। और ये बात सत्य है कि ये मेरा मौसेरा भाई है, इसकी मां और मेरी मां दोनों सगी बहनें, इसकी मां का नाम गरीबी और मेरी मां का नाम अमीरी। तो राजा को बहुत वैराग्य आया और राजा वन में तपस्या करने के लिए चला गया। तो कहने का भाव ये है कि हम आए हैं, हमें जाना है, ये हम पहले भी सुनते हैं। अब बाबा ने तो बता ही दिया और दुनिया के हालात भी देखिए, तो बाबा कहते कि ये संसार आसार है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत स्वप्न मात्र है। कहते जिन्होंने भी देह से प्रीत लगाई उन्होंने यही कहा ये संसार आसार है। राजा भर्तृहरि की कहानी आपने सुनी होगी। कहते राजा भर्तृहरि जो थे उनको ऋषि ने एक फल दिया था जिसका नाम था अमर फल, क्योंकि ऋषि ने सोचा कि हमारा राजा बहुत सूझवान है, बुद्धिवान है, न्यायप्रिय है और हमारा राजा ये अमर हो जाए। तो ऋषि ने वो फल राजा को दिया। राजा का अपनी रानी से बहुत प्यार था, तो राजा ने सोचा मेरी रानी अमर हो जाए, तो राजा ने वो फल अपनी रानी को दे दिया। अब रानी का प्यार आगे मंत्री से था, तो राजा ने वो फल मंत्री को दे दिया। मंत्री जो था वो आगे वैश्या के पास जाता था, तो राजा ने वो फल किसको दिया? वैश्या को दे दिया। अब वैश्या सोचती है कि मेरा जीवन तो तुच्छ है, मेरा जीवन तो पतित है, मेरा जीवन तो अपवित्र है, मैं अमर होकर के क्या करूं। तो क्यों नहीं मेरे देश का राजा बुद्धिवान है, सूझवान है, न्यायप्रिय है, तो क्यों नहीं मैं फल राजा को दे दूं? तो वैश्या वो फल लेकर के राजा के पास पहुंच गई। राजा ने जब वो फल देखा तो राजा बहुत हैरान हुआ। जब उसकी चेकिंग हुई, मालूम पड़ा कि ये वैश्या के पास फल कहां से आया, तो फिर तो पता लगना ही था कि वैश्या को फल दिया मंत्री ने, मंत्री को फल दिया रानी ने, और रानी को फल दिया राजा ने। जब राजा को ये सारी बात समझ आई तो राजा को बहुत वैराग्य आया और राजा राजबाग छोड़ करके जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। अब शिव बाबा की याद में बैठ गए।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को यही बताया है कि अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा हमेशा कहते थे, ये हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, जो होगा अचानक होगा। मनमोहिनी दीदी जी कहा करते थे, अब घर जाना है। प्यारे बाबा भी हम बच्चों को रोज स्मृति दिलाते हैं प्यारे बाबा की हम बच्चों के प्रति आश है कि बच्चे बाबा के कार्य के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने। बाबा के बेहद कार्य में सहयोगी बनने के लिए हमें अपनी आत्मा को पहले देह और देह से न्यारा करना होगा। मैं कौन? अव्यक्त बाप दादा ने तीन बातें बताई हैं कि तीन बातें सदा याद रखो, देह भान में कभी नहीं आना। दूसरी बात देह अभिमान, तीसरी बात देह से लगाव। द्वापर युग से लेकर हम देह भान में रहे, देह के नाम को अपना नाम, देह के धाम को अपना धाम, देह के देश को अपना देश समझा। मैं आत्मा हूं, आत्म ज्ञान बाबा ने आकर के अच्छी तरह से बताया। आगे भी हम समझते थे कि हम आत्मा हैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इतना समझते थे। लेकिन बाबा ने हमें आत्म ज्ञान की अनुभूति कराई है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है इतनी छोटी सी बिंदी में। बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरु जी के आश्रम में गए, अंदर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? स्वामी विवेकानंद कहते यही तो मैं समझने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। ऋषि मुनि भी कहते गए नेति नेति, बेअंत बेअंत, हम नहीं जानते। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट सारा ज्ञान क्लियर किया कि तुम देह नहीं तुम देही हो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। इस शरीर को चलाने वाली 7 गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। कहते एक बार कुएं ने सागर से पूछा कि हे पिता, तुम नदियों नहरों को अपनी गोद में समा लेते हो और मुझे अलग थलग छोड़ देते हो। तो सागर ने कहा असीम से मिलने के लिए असीम बनना पड़ता है, तुम दे अहंकार की दीवार में जकड़े हुए हो, तोड़ दो इस दीवार को, धरती को सींचते हुए, खेतों को हरा भरा करते हुए समा जाओ मेरी गोद में, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमें संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा रोज कितनी बार यही कहते हैं, बच्चे आत्म स्वरूप की स्थिति में रहो। मुझे याद है जब हम पहली बार मधुबन में गए थे तो प्यारे ब्रह्मा बाबा सब बच्चों को पाठ पक्का कराते थे कि बच्चे तुम्हें याद है कि तुम आत्मा हो, दूसरा तुझे शिव बाबा याद है, बाबा ने ऐसे स्लोगन प्लेट बनाई हुई थी, शिव बाबा याद है, बाबा कहते थे सब जगह लगा दो, बेडरूम में लगाओ, वॉशरूम में लगाओ, बरामदे में लगाओ, आंगन में लगाओ, सब जगह लगा दो, शिव बाबा याद है। बाबा हर एक को आत्म स्वरूप की स्थिति कर में स्थित कराते थे। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई तो तीसरे दिन हमारे पंजाब जोन के इंचार्ज जो आदरणीय चंद्रमणि दीदी थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रेम तुम दृष्टि लेकर के योग करती हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है कि दृष्टि क्या होती है। दीदी कहती अच्छा मैं तुम्हें दृष्टि दूंगी तो मेरे से दृष्टि लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये 1965 की बात है जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संपर्क में आई। तो एक छोटा सा कमरा था, लाल लाइट, सामने शिव बाबा का फोटो और दीदी मेरे सामने बैठी और लाल लाइट जल रही है। और दीदी ने कहा मेरे मस्तक की तरफ देखना, बिंदु स्वरूप आत्मा हूं और शिव बाबा को याद करना। मैंने कहा ठीक है। उन दिनों में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो गीत निकले थे। पहले फिल्मी गीत चला करते थे, आपने सुना होगा मुरली में भी फिल्मी गीत आता है। तो उस समय दो गीत निकले थे, वसुधा के सांचल में स्वर्गिक भारत भूतल में शिव स्वागत आज तुम्हारा, और दूसरा गीत था हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो वो सीन आज भी याद है कि दीदी मुझे दृष्टि दे रही है और चारों तरफ लाइट ही लाइट है और मुझे दीदी दिखाई नहीं दी और मेरे कानों में मीठी मीठी आवाज गीत की आ रही है कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और उसमें फिर लास्ट में लाइन है जागो उठो मनुष्यों लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। दीदी दृष्टि दे रही है, मैं ले रही हूं और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसी शांति, ऐसा अनुभव कि वो जो दृष्टि थी मेरी जीवन की सृष्टि बदल गई। आज मुझे 60 साल हुए बाबा का बना। तो प्यारा बाबा भी हम बच्चों से अब यही चाहती हैं कि बच्चे संपूर्ण पवित्र बन बाप समान संपन्न बनो संपूर्ण बनो। अव्यक्त बाप दादा ने चार बातें बहुत अच्छी बताई है कि आपके अंदर पवित्रता की ऐसी झलक होनी चाहिए, मान वचन कर्म हर प्रकार से इतना बाबा से लगन हो, मन में संकल्प बाबा का, वाचा में बाबा का ज्ञान बाबा का नाम और कर्मणा में जो बाबा ने सिखाया है उसका प्रैक्टिकल जीवन हो, और तब आप संपूर्ण पवित्र बनकर प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने बताया पहली बात कि बच्चे आपकी ऐसी धारणा होनी चाहिए, आपके सूक्ष्म संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, देहधारी की याद ना हो, एक बाबा याद हो। और इतना आप बाबा को याद करें, योग करें कि आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। दूसरी बात प्यारे बाबा ने कहा कि आपकी आंखों में रूहानियत का नशा होना चाहिए, आपके नैनों में बाबा नजर आना चाहिए कि इनके नैनों में बाबा के सिवाय और कुछ नहीं है। और बाबा कहता है आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए कि इनको मिला कौन है, ये सब आत्माएं संपन्न हैं, अविनाशी ज्ञान खजानों से वरदानों से ये आत्माएं भरपूर हैं, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। चौथी बात प्यारे बाप दादा ने कही है कि आपकी चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि आपको मिला कौन है जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, तीर्थ यात्राएं कर रही है, ढूंढ रही है, लेकिन आपको वो सर्वशक्तिवान स्वयं भोलानाथ मिला है। तो बाबा कहते आप अनेकानेक आत्माओं को साक्षात्कार करा सकेंगे। हमारे पुरुषार्थ की इतनी गहराई में जाकर के बाबा को याद करना है, तो इसलिए देह भान मेरे को याद है। हमारी प्रकाशमणि दादी, हमने बहुत नजदीक से उनको देखा, दादी बहुत न्यारी और प्यारी थी। जब कभी मीटिंग होती थी और दादी ऐसे आत्म स्थिति में न्यारा होकर बात करती थी, जब कोई राय आती दादी ये नहीं कहती थी मेरा ये विचार है, दादी कहती थी दादी ऐसा कहती है, दादी का ये विचार है, तो ऐसा अनुभव होता था कि दादी अलग है और दादी न्यारी होकर के अपना विचार दे रही है। तो देह भान से हमको न्यारे होना है, तब हम संपूर्ण पवित्रता की ओर चलेंगे। फिर बाबा ने बताया है देह अभिमान जो हमारे नंबर कम कर देता है। देह अभिमान, अभी अभी मेरी बात मान ली जाए तो मैं खुश हूं, तो मेरी स्थिति अच्छी है, नहीं। मुझे याद है दादी ने एक बार क्लास में पूछा था भाइयों से कि किन किन की पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, वो हाथ खड़ा करें। तो आज हम भी आपसे हाथ खड़ा कराती हैं कि जिनकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है वो हाथ खड़ा करे। तो दादी कहती थी क्यों नहीं चलती, जब सात फेरे लिए थे तो उसमें ये कहा गया था कि पति परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर की बात क्यों नहीं मान रही है। वो इसलिए नहीं मान रही है कि पति परमेश्वर बना नहीं है, पति बीच में क्रोध कर लेता है। तो दादी, फिर दादी पूछती है जरूर घर में क्रोध करते होंगे, तो फिर दादी ने पूछा अच्छा क्रोध किस किस को आता है, तो हाथ खड़ा करे जिसको नहीं आता है। तो मुझे अपनी दादियों की पालना याद आती है कि दादी ने कहा था कि जो क्रोध कभी नहीं करता वो हाथ खड़ा करे, तो फिर दो चार ने हाथ खड़ा किया था। दादी कहती ऐसे नहीं मानूंगी, दादी कहती पहले उसकी पत्नी रिजल्ट दे कि हाँ ये क्रोध नहीं करता है। दूसरी बात दादी कहती थी कि उसकी ब्राह्मणी रिजल्ट दे कि हाँ इसको कभी क्रोध नहीं आता है, जो बहन उसको लेकर के आई थी। तो ऐसे एक दो भाई थे जिनों का ऐसा रिजल्ट था, फिर दादी ने उनको गिफ्ट भी दिया था। तो कहने का भाव ये है कि देह अभिमान अभी हमारी बात मान ली जाए तो हम बाबा की प्रत्यक्षता कैसे करेंगे। तो इसलिए देह और देह के संबंध और देह अभिमान से हमको दूर जाना है। तीसरी बात, देह से लगाव। बाबा कहते ये देह सर्प है, आत्मा मनी है। सर्प को नहीं देखो, देखो मनी को देखो, उलझन में नहीं रहो। और फिर बाबा कहते लगाव जो है वो जरूरी नहीं देह से होता है, मनुष्य आत्माओं की विशेषता से भी लगाव हो जाता है कि इसका गुण बहुत अच्छा है, इसमें धैर्यता है, इसमें गंभीरता है, इसलिए बहन जी मेरा इससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो बाबा ने कहा है, दादी कहती थी अरे आपने मनुष्य आत्मा का एक गुण देख करके उस पे प्रभावित हो गए, हमारा बाबा तो गुणों का सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप जो गुणों का भंडार है, आप जब किसी भी मनुष्य आत्मा की विशेषता को देखें और आपको लगे थोड़ा सा मेरा झुकाव और लगाव है, तो आप बाबा को याद करें कि मेरा बाबा सत्यम शिवम सुंदरम गुणों का भंडार है, उसकी सुंदरता को कभी दाग नहीं लगता, तो कभी भी आपको कभी देहधारी की खेच नहीं होगी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो पूरा पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन कभी कभी कई आकर सुनाते हैं कि बहन जी ज्ञान में जब हम पहले चले तो हमारी बहुत अवस्था अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे में थोड़ा सा कमजोरी आ गई है। तो कमजोरी का कारण क्या है? शरीर में कमजोरी आती है तो डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आत्मा में कमजोरी आई है तो क्या करना है? हमारा अविनाशी सर्जन शिव बाबा है, शिव बाबा के पास बैठ करके अपनी सारी बात करें, सारी कमजोरियों को रखें, और बाबा उस कमजोरियों का समाधान जरूर देगा। सबसे बड़ी बात है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। हम शाम को जो कर लेंगे, हम सुबह कर लेंगे, हम दोपहर को कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी तो नहीं करता, वो भी तो ऐसे है, किसी को नहीं देखना। बाबा ने कहा एक बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, वरिष्ठ दीदी दादियों को देखो, वरिष्ठ भाइयों को देखो, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है। तो कहने का भाव ये है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मैं समझती हूँ कि आलस है। कहते छोटी सी बात बताती हूँ, कहते शैतान की दिल हुई मैं संन्यास कर लूँ, शैतान की दिल हुई मैं संन्यास कर लूँ, तो उसको उसने अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। उसको किसी ने पूछा कि अगर तेरा संन्यास में दिल ना लगा तो तू क्या करेगा? कहता चिंता ना कर, मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया है। कहता क्या प्रबंध किया? कहता मैंने अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध सब कुछ बेच दिया, लेकिन एक बात मैंने अपने पास सामान रख लिया है। वो कहता वो कौन सा? कहता वो आलस। जब आलस होगा तो ये सारी जो लाइन है ये चली आएगी। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है? हमें बाबा को हर समय 24 घंटे आलस में अपनी दिनचर्या का ध्यान दें। बाबा ने बहुत सुंदर दिनचर्या बना करके दी है, सुबह अमृत वेले पावरफुल योग करना है, और सुबह अगर हमारा 4 से 5 पावरफुल योग होगा तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी। उसके बाद फिर बाबा कहते नहा धो करके बाबा की क्लास में आइए, मुरली सुनिए। शिव बाबा को सुबह अमृत वेले बाप के रूप में याद करो, और जब क्लास में आओ तो टीचर के रूप में याद करो, उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो, और फिर सारे दिन में जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, शिक्षा दी, सतगुरु के रूप में उसको अच्छी तरह से दोहराओ, याद करो, और फिर शाम को सखा के रूप में याद करो। आओ बाबा बैठे, अब बाबा को याद करें। फिर रात को बाबा कहते धर्मराज के रूप में याद करो। सारे दिन में जो आपने दिनचर्या में कोई भी कार्य किया है तो क्षमा मांगो बाबा, अगर मेरे से कोई श्रीमत की उल्लंघना हुई है, मेरे द्वारा किसी को दुख मिला है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और फिर मैं दूसरे दिन नहीं करूंगा। तो धर्मराज के रूप में अपना सारा चार्ट लिख करके बाबा को गुड नाइट करके सोएं। जब हम अपनी दिनचर्या का ध्यान देंगे तो मायावी संकल्प और आसुरी संकल्प कोई आएगा ही नहीं। दूसरी बात, सदा बाबा को याद करने के लिए एक मूल मंत्र याद करें, कौन सा? मनमना भव मद्याजी भव। इसका मतलब क्या है? मन ही मन है, मुझे बाबा को याद करना है, और बाबा से जो वर्षा मिला है उसको याद करना है। मुझे याद है, कहते दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, एक ने कहा कि मेरी तो मन की सारी बात पूरी हो जाती है, मेरी मन की बात सारी पूरी हो जाती है। दूसरे ने कहा कि तेरी मन की बात कैसे पूरी हो जाती है, मन की बात तो श्री कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात तो राम की पूरी नहीं हुई। श्री कृष्ण देवकी के जन्म लिया और यशोदा ने पालना की, रियल मदर से तो उसकी पालना भी नहीं हुई। और श्री राम जिसको सुबह राज गद्दी मिलनी थी उसको रातों रात वनवास हो गया। तो मन की बात तो श्री कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात श्री राम की पूरी नहीं हुई, तेरी कैसे हो गई? होती है। वो कहता मैंने मन ही भगवान को दे दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाबा ने जो मूल मंत्र दिया है, मन मना भव मद्याजी भव, अपना मन बाबा को देना है, बाबा को सदा याद रखना है। मद्याजी भव, जो बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं उसको सदा याद रखें, और बाप समान जैसे हमारा बाबा पवित्रता का सागर है, उसको मिलने के लिए अपना पवित्र स्वरूप सदा याद रखें। ओम शांति, ओम शांति।
हम